प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग छठा, लेक्चर नंबर 472। ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। सुर असुर नरपति वन्दने प्रविनष्ट घाति कर्मणे प्रणमन करो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेष तीर्थंकर अनेस सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान ध्रुव चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदो वणि हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये रीते गणधरवने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनि जेनाति शिव प्राप्ति मने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 68 पर हम आ गए हैं।
भूमालन,
हाँ, यह नया जो पैराग्राफ है यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं।
जो लोग हमारा प्रवचन सुनकर अपनी जैसी मान्यता कर लेते हैं, यानी गुरुदेव जो बता रहे हैं, यानी जो भगवान महावीर ने बताई बात वो गुरुदेव ने झेली और वैसे उनके भी मंतव्य रहा और उनको सुनकर वो लोग जो हो गए उनको ऐसा आरोप दिया जाता है कि तुम अभी कांजी स्वामी के हो गए।
कांजीपंती,
क्या क्या कहा उन्होंने?
कांजी का ग्रुप, कांजी ग्रुप,
कांजी ग्रुप वाले हो गए। वो साउथ के हैं तो इंग्लिश में ही बोलेंगे।
हाँ, अभी 2.5 साल से सुन रहे हैं ना वो भाई, रोज सुनते हैं। हाँ, उन्होंने वो तमिल अनुवाद किया है ना, ट्रांसलेशन। हाँ, अभी भूबालन जैन, और अभी कर्णानियोग परिचय का कर रहे तमिल में,
होते आ रहे हैं। उनका आज दोपहर में फोन आया था, वो बताते थे अभी सब लोग मेरे को तुम कांजी ग्रुप में गया, कांजी ग्रुप में गया, ऐसा आरोप कर रहे हैं। और जो पढ़ते हैं वो कहते हैं नहीं आप सही कर रहे हैं, और पढ़ते ही नहीं खाली पुस्तक देख के छोड़ देते हैं, उनके ऐसी मान्यता हो जाती है।
हाँ, देखो अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं, नया पैराग्राफ है ना। और इसीलिए मूर्त तथा अमूर्त द्रव्यों का मूर्तत्व अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से उस भाव द्वारा जुदा होने से उनमें इस प्रकार के भेद निश्चित करना चाहिए। यानी वो जो अलग अलग जो द्रव्य है उनके अपने विशेष गुणों के द्वारा उनको भेद करके हम पहचान सकते हैं। वीरेश भाई है।
अच्छा।
ज्ञान से आत्मा जानने में आता है, वर्ण गंध की पर्याय से परमाणु जानने में आता है, क्योंकि वो उनका चिन्ह बताए ना, लिंग हो गया उसका। ऐसे ऐसे गुण से भिन्न द्रव्य है ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योंकि ये गेय अधिकार है, तो गेयों को इन्हें हमको छह द्रव्यों को जानना है, तो छह जुदे जुदे द्रव्य है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उनके लक्षणों के द्वारा, उनके लिंगों के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा। यह मूर्त गुण है, परमाणु का मूर्त गुण है और आत्मा का अमूर्त गुण है, दूसरे द्रव्य में भी है। जयधवल में तो ऐसा लिया है कि कर्म के निमित्त के संबंध से जीव को मूर्त भी कहते हैं। ये तो समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड में भी लिखा है कि जब तक संसारी जीव है तब तक जीव को मूर्ति कहा, रूपी कहा, और सर्वथा अरूपी कब हो जाएगा, जब सिद्ध हो जाएगा तब। जयधवल से वो सारे ग्रंथ बने ना आगे चलकर। कर्म के निमित्त के संबंध से जीव को मूर्त भी कहते हैं, उसमें आया है। वह तो नैगमनय के संबंध का एक कथन है। नैगमनय संकल्प से अनेक बातें करता है, यानी उसमें संकल्प नहीं है, जीव और कर्म अनादि से बंधे हुए ही अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए जीव को ही कथनचित वो रूपी कह दिया। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो सम्यक्त्व मार्गणा के शुरुआत में ही ये बात आई है। यहाँ कहते निश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक गुण से वह द्रव्य जानने में आता है, इसलिए उस गुण से ने उस लिंग से वह द्रव्य जानने में आता है और दूसरे के गुण से उसका द्रव्य जानने में आता है, यानी हर एक द्रव्य के अपने अपने गुणों से वह द्रव्य जानने में आता है, ऐसा उसे निश्चय करना चाहिए। ज्ञान द्वारा आत्मा जानने में आए, लेकिन ज्ञान द्वारा पुद्गल जानने में आए ऐसा नहीं है। हम पुद्गल को जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं, पर ज्ञान ये पुद्गल का लक्षण नहीं है। ज्ञान द्वारा पुद्गल जाने में नहीं आता है, नहीं, उसका क्या अर्थ है? पुद्गल कैसे जाने जाएंगे? उसके स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण। और जहाँ ज्ञान है वो तो आत्मा है, ऐसा हम जानेंगे।
यानी यहाँ पर ज्ञान जो है वो जीव का यानी आत्मा का चिन्ह है, यानी उसका विशेष गुण
है,
और उससे वो ही जाना जाएगा, पुद्गल नहीं।
आगे वही लिखा है, देखो ज्ञान में जानने में आए वह दूसरी बात है। देखो पुद्गल को जानने वाला ज्ञान में ही जाना जाएगा, परंतु ज्ञान ये चिन्ह नहीं है उसका, पुद्गल का ज्ञान चिन्ह तो आत्मा का है। यानी जहाँ ज्ञान है वो आत्मा है ऐसा हम जान सकते हैं। जानने का कार्य ज्ञान में हो रहा है, हाँ, परंतु तो अपने में भी यहाँ जो कार्य हो रहा है जानने में, वह मैं जुदा हूँ, जीव हूँ, ये बात नक्की करने। 68 पेज नीचे का पैराग्राफ जो बड़ा है ना, वहां से पढ़ रहे हैं, पांचवी लाइन। ज्ञान में जानने में आए वह दूसरी बात है, परंतु ज्ञान द्वारा जड़ जानने में आए ऐसा नहीं। यानी ज्ञान लक्षण द्वारा, ऐसा समझ लो, ज्ञान द्वारा ने ज्ञान लक्षण द्वारा जड़ नहीं जानने में आता। ज्ञान द्वारा जड़ न जानने में आए, उसके वर्ण गंध रस की पर्याय द्वारा जड़ जानने में आए, तब इसने जाना कि इसके, वो ई बराबर छपा नहीं है, इसके वर्ण गंध रस द्वारा वह पुद्गल है। यानी जहां वर्ण गंध रस वगैरह दिखेंगे, जाने जाएंगे, तो वो पुद्गल है, ऐसा हम नक्की कर सकते हैं। मेरे जानने में आया इसलिए वह मेरे गुण द्वारा जानने में आया ऐसा नहीं। पुद्गल मेरे जानने में आया इसलिए मेरे गुण द्वारा जानने में आया ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? पुद्गल जो जानने में आया है वो उसके, वो हमने पुद्गल है ये कैसे नक्की किया? तो उसमें वर्ण गंध ये कह रहे, उसके लक्षणों के द्वारा जानने में, जानने का कार्य अपने ज्ञान में हुआ, पर उसमें वो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसके द्वारा हमने नक्की किया। मेरे गुण में भले जानने में आया, यानी अपने ज्ञान में भले जानने में आया, परंतु उसके गुण जो वर्ण गंध रस स्पर्श है उसके द्वारा वह जानने में आया, ऐसा मेरे ज्ञान ने जाना, ऐसी बातें समझ में आया। तो ये तो ज्ञान ने जाना और ज्ञान द्वारा जाना, इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया था। तो जानेगा तो ज्ञान ही जानेगा सभी द्रव्यों को, पर ये पुद्गल है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है किसने नक्की किया, तो उनके गुणों के द्वारा वो नक्की हुआ जाना ज्ञान ने, ज्ञान में जाना गया, परंतु वो द्रव्यों की पहचान उनके गुणों के द्वारा हुई। ज्ञान में जानने में आए वह दूसरी चीज है, और वह चीज उसके गुण द्वारा जानने में आए वह दूसरी चीज है। उस गुण से उसका ख्याल आया कि यह पुद्गल मूर्त है, समझ में आया, ख्याल आया भले ज्ञान में, परंतु ख्याल क्या आया कि यह मूर्त वर्ण गंध रस स्पर्श है, वह परमाणु है। जानने में ज्ञान में आया, परंतु वो तो किसके द्वारा हुआ, क्या क्या जाना उसने, ये जो मूर्तिक जो है वर्ण गंध रस स्पर्श है ये तो परमाणु है, ऐसा परमाणु की पर्याय से परमाणु का ख्याल आया, परमाणु के पर्याय पुद्गल के पर्याय से ये पुद्गल है ऐसा हमें जानने में आता है। हमने पहले भी ये बात देखी थी कि द्रव्य जो जानने में आता है तो उसकी अवस्था के द्वारा ही उसका ज्ञान होता है, क्योंकि द्रव्य हर समय कोई ना कोई अवस्था रूप से ही पाया जाता है। तो पुद्गल है तो उसके जो मुख्य गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, उसकी कोई ना कोई पर्याय तो रहेगी ही रहेगी, और हमारे ज्ञान में तो वो पर्याय ही आती है, वो गुण की पर्याय। जैसे हम कहें वर्ण ज्ञान में आया कि नहीं, वो लाल है कि पीला है, तो लाल वर्ण, पीला वर्ण, काला वर्ण, ऐसा हम जानते हैं, यानी वो क्या हो गया, उसकी पर्याय हुए। हाँ, अपनी ज्ञान के पर्याय से परमाणु ख्याल में आया ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, वो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण के पर्याय के कारण वो ज्ञान में आया, अपने ज्ञान के कारण वो पुद्गल है ऐसा नहीं जानने में आया, ये कह रहे। ज्ञान की पर्याय में परमाणु का जान पान हुआ, परंतु उस परमाणु का जानना जिस ज्ञान में आया वह पुद्गल उससे भिन्न है। वर्ण गंध रस की पर्याय से पुद्गल है ऐसा ज्ञान में आया, ऐसी बात है। यानी जो ज्ञान जानता है ना वो डिफ्रेंशिएट करके ही जानता है, तभी तो हमने कहा ना, हमने कहा ये सफेद है, तो सफेद है तो ये काला नहीं, पीला नहीं, लाल नहीं, नीला नहीं, तो हम जान ही रहे ना, ज्ञान का कार्य ऐसा है। तो हमने ये पुद्गल है ऐसा नक्की किया, उसका अर्थ क्या है, उसके उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसके द्वारा वो पुद्गल है ये हमने नक्की किया। बनिए को फुर्सत नहीं मिलती, हाँ हाँ, एक आध घंटा मंदिर में जाए, भगवान के दर्शन करे, हो गया धर्म, जाओ मरो। अरे भाई भगवान, तेरी चीज अलग है प्रभु, वह कोई क्रियाकांड के राग से जानने में आए ऐसी वह चीज नहीं है। क्या कहते हैं, शुभ राग करते करते आत्मा जानने में आए ऐसा होता है क्या? आपको कोई सीखनी है लैंग्वेज, स्कूल में जाते थे ना आप, तो कितने उपवास करने से वो सीखते थे नहीं, तो दान देने से, तो स्कूल को डोनेशन दे दो ना, लाख करोड़ का दे दो, परंतु जाके सीखना तो पड़ेगा। यहाँ पर भी डोनेशन तो देते हैं एडमिशन के लिए, पर वो स्कूल में जाके दाखला करने के लिए, पर वहां जाके पढ़ना तो पड़ेगा तभी सीखोगे। तो इतना डोनेशन देते तो डबल दे दो ना, तो डायरेक्ट कोई आपको झूठा सर्टिफिकेट भी देगा, परंतु वो नॉलेज तो नहीं मिलेगा आपको, ये बात है। ये कहते कोई क्रियाकांड के राग से जानने में ऐसी वह चीज नहीं है, क्योंकि राग उसका वास्तविक लक्षण यानी चिन्ह नहीं है। पंचाशिकाय में तो ऐसा लिया है भाई, कहा ना कि उसका जो राग आदि उत्पाद व्यय है वह उसका लक्षण है, वह तो पर से भिन्न करने को का क्या कहते हैं। राग भी जीव द्रव्य में होता है, और राग जीव की परिणति में है, उसकी पर्याय में है, तो वो पर्याय वो भी जीव को सिद्ध कर रही है। ऐसा जो अलग अलग अपेक्षा से जहां कथन आता है ना, इसलिए वहां क्या कहा कि राग आदि उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय ने पर्याय में जो राग आदि है वो उसका जीव का लक्षण बताए, वह तो पर से भिन्न करने को कहा। पंचाशी काय में समझ में आया, राग है वह आत्मा का है ऐसा उसे जानने में आता है, ऐसा कहते हैं। अरे अरे कितने कथन। अभी हमने भी देखा ना चेतना, उसका लक्षण बताया, वो ज्ञान चेतना कर्म चेतना शुद्धोपयोग को भी लिया, शुभ अशुभ को भी लिया था, है ना। कितने कथन, यह राग इसका है ऐसा जानने के लिए वहां राग को लिंग यानी चिन्ह कहा है, उत्पाद व्यय ध्रुव को लक्षण कहा है। उत्पाद व्यय कहा तो रागादि का उत्पाद है, रागादि का व्यय है, उसे भी लक्षण कहकर जानने में आया। ये समझ में आती है बात, क्योंकि अभी तो क्रोध आ रहा था, क्रोध का उत्पाद था, फिर क्रोध मिट गया, फिर कोई लोभ उत्पन्न हुआ, तो एक एक कषाय चली जाती है, नहीं राग मिटता है कोई अन्य राग उत्पन्न होता है, उसकी बात यहाँ कह रहे। उसी को समय सार में तो वो तो जीव का ही नहीं, पुद्गल, पुद्गल कहा उसको, राग को पुद्गल कह दिया। तो जहां जिस अपेक्षा से कथन है उसको बराबर पकड़ना है, समझना चाहिए। यहां कहते हैं कि ऐसे नहीं, आत्मा राग से जानने में आए ऐसा नहीं। देखो वो तो अनुमान कहते ना, राग से जानने में आता है क्या, वो तो अनुमान से जाना, परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव राग से नहीं होगा ये कहना चाहते। जहां राग चल रहा है वह जीव है ऐसा हम अनुमान से समझ सकते हैं। जैसे हम कहते ना ये तो एक इंद्रिय जीव है, द्विंद्रिय, ये जीव है कैसे, क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं ना वहां, कि कोई ईयर है, कोई कीड़ी है, छींटी है, तो हम कोई वहां सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई रखते हैं, बीच में उंगली रखेंगे तो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, यानी उनमें भी कोई भय हो या जो कोई अन्य चीज है तो ये ख्याल में आता है, तो ये यहाँ पर जीव है ये हमको अनुमान हो सकता है, परंतु अपना अनुभव करना है तो वो राग से जाना नहीं जाता, ये कह रहे। कि आत्मा राग से जानने में आए ऐसा नहीं, परंतु ज्ञान की पर्याय द्वारा जानने में आए तब राग होता हो उसे जाना। ये राग को भी जानने वाली कौन है, ज्ञान की पर्याय है। हाँ तो ये ज्ञान की पर्याय है वो आत्मा को नक्की करती है, राग नहीं कर रहा है अभी, अनुभव की बात नहीं, अभी यहाँ पर भी आत्मा है इसे लक्षण के द्वारा उसको हम पहचान सकते, बस इतनी बात लेनी। समझ में आया, थोड़े फर्क में कितना बड़ा फर्क है, यह बात बहुत सूक्ष्म है। यहाँ तो द्रव्यों की पहचान उनके लक्षणों से होती है, तो यहाँ जीव द्रव्य की पहचान वो ज्ञान जो कार्य हुआ है, जानने रूप कार्य हुआ है, उससे यह जीव है ये ख्याल में आ सकता है। भगवान यह फर्क क्यों करते हैं, यह बात सूक्ष्म है। शरीर को जानना है तो कहते हैं कि उसकी जो यह वर्ण गंध रस की पर्याय है उसके द्वारा शरीर जानने में आए, जानने वाला उसे भले जाने, वो भ जरा स्पष्ट हुआ है, परंतु वह चीज उसके वर्ण गंध के लिंग द्वारा लिंगित है, उस चिन्ह से वह पदार्थ है ऐसा जानने में आता है, मेरे से वह पदार्थ है ऐसा नहीं। समझ में आता है, यानी ये जो शरीर जो है उसके स्पर्श रस गंध वर्ण जो कोई विशिष्ट है उसके द्वारा वो जानने में आ रहा है, बंधु मैं तो मेरे ज्ञान के द्वारा जानने में आ रहा, समझ ना, तो वो उसके चिन्ह है, मेरा चिन्ह जुदा है, और हमने तो उसी को मैं हूं ऐसा मान लिया, ये भूल हो गई। यह परमाणु ऐसे चले वह क्रियावती करो, क्रियावती का लक्षण उसका है, इस क्रियावती लक्षण द्वारा पुद्गल जानने में आए, उसके क्रियावती लक्षण द्वारा आत्मा जानने में आए ऐसे नहीं, क्योंकि पुद्गल की क्रियावती शक्ति उसमें, जीव में भी वो लक्षण है तो जीव की जीव में, वैसे आत्मा में उसकी क्रियावती शक्ति द्वारा यह परमाणु है ऐसा जानने में आए, वह आत्मा में इस प्रकार से जानने में आता है, वह इस प्रकार की उसकी जो क्रियावती, हर जगह वो अर्ति को वती करो, कि उसकी जो क्रियावती शक्ति है उसके द्वारा यह परमाणु है ऐसा ज्ञान ने जाना, परंतु ज्ञान ऐसा माने कि मेरे कारण वहां हिलना डुलना हुआ तो वह मिथ्या भ्रम है। ज्ञान ने तो केवल जाना, कि ये परमाणु के पुद्गल की यहाँ तो हलन चलन रूप क्रिया हुई, वो मेरे से हुई है, भ्रमणा हुई। पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है, उसमें भी उसका कार्य उसके अपने से होता है, तो हमें ये पुद्गलों की भी पर्याय हमने क्यों जानी? सिद्धांत प्रवेश का मूल में क्या सिखाते? द्रव्य तो बताते बताते उसके विशेष गुणों को भी हमने सीखा था और उसके पर्याय को भी सीखा था, इतना झंझट क्यों? पर्याय के द्वारा द्रव्य जानने में आता है और हमको द्रव्य को नक्की कर सकते हैं। ये किसकी? ये पर्याय तो हमारे ख्याल में आ रही है, तो कोई काला पीला दिखता है तो वो क्या है? वो पुद्गल ही होना चाहिए, वो जीव के कारण वो उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो क्रिया पुद्गल जानने में आता है, आत्मा भी जानने में आता है, क्योंकि आत्मा में भी क्रिया शक्ति है ना, वो आ गया ना। पहले में द्रव्य सामान्य की व्याख्या आई, बाद में लोक अलोक के दो भाग की बात आई, फिर तीसरे में, पहले में तो वो तो जीव और अजीव की बात आई थी और द्रव्य सामान्य तो पूरा अधिकारी अलग था, प्रथम स्तर जो अलग था वो। तीसरे में क्रिया और भाव वती वती करो, शक्ति का वर्णन आया, क्योंकि दो द्रव्य है उसमें क्रियावती शक्ति भी और भाववती शक्ति, क्रिया और भाव वाले दो द्रव्य और बाकी चार केवल मात्र सिर्फ भाव वाले, भाव ने परिणम ना, पर्याय वाले। परिणमने का स्वभाव हर एक द्रव्य का है, हर एक द्रव्य परिणमता है, छह द्रव्य, पर दो द्रव्य परिणमते भी है और उसमें वो क्रिया भी है। अब मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण, अभी 131 के जो आप हेडिंग बता रहे, मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण तथा संबंध, अर्थात उनका किन द्रव्यों के साथ संबंध है यह कहते हैं, यानी उन लक्षणों का संबंध किसके है, उनके लक्षण कौन से द्रव्य में है ये बता रहे। मूर्त गुण और अमूर्त गुण उसका लक्षण और संबंध किन द्रव्यों के साथ है यह कहते हैं। 131 नंबर की गाथा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ ऊपर ले रखा है संस्कृत में, अथ मूर्त अमूर्त गुणानाम लक्षण संबंधम आख्याति। मूर्त और अमूर्त गुण है और उसका लक्षण क्या है, किसको मूर्त कहना किसको अमूर्त कहना और उसका संबंध किसके साथ है, यानी कौन से द्रव्य के वो गुण है, ये बात अभी बताएंगे। गाथा पढ़ते हैं।
मुत्ता इंद्रिय गेच्छा पोगल दौवप्पगाहणे गविधा दौवाणम मुत्ताणम गुणा अमुत्ता मुणे दौवा। मुत्ता इंद्रिय गाया पुद्गल द्रव्यात्मका अनेक विधा द्रव्याणाम मूर्तानाम गुणा अमूर्ता ज्ञातव्या। गुणमूर्त इंद्रिय ग्रायते पुद्गलमयी बहुविध छे द्रव्यो अमूर्तिक जेह तेना गुण अमूर्तिक जाने जो।
अभी अन्वयार्थ, यानी ये जो हम गाथा पढ़ी उसका अर्थ बताते। इंद्रिय ग्राह्या मूर्त, इंद्रिय ग्राह्य एवं मूर्त गुणों, मूर्त नहीं मूर्ता चाहिए ना, इंद्रिय ग्राह्या मूर्ता। श्लोक में देखो ना, मूर्ता इंद्रिय ग्राह्या, क्योंकि इंद्रिय ग्राह्या अनेक वचन है और मूर्त एक वचन हो जाता, मूर्ता करो।
ये जैसे श्लोक में मूर्ता हा लिखा नहीं है, मूर्ता लिखा है।
हाँ, परंतु तो उसका विसर्ग का लोप हो गया, आगे अच्छा, स्वर आया ना, ये आया ना। हाँ, तो मूर्त लिखे ना, वो तो मूर्ता हा होना चाहिए। देखो इंद्रिय ग्राह्या, एक्चुअली वो जुड़ाक्षर जरा दूर है, ठीक है, पर ये एक शब्द है, इंद्रिय ग्राह्या मूर्ता हा, यानी उसका अर्थ क्या है? इंद्रिय ग्राह्य, ग्राह्य समझते दक्षा बे, यानी क्या खाना, तो ग्रहण करने जानने के लिए ग्रहण शब्द आता है। इंद्रियों से ग्रहण होता है ना, क्या होता है, इंद्रियों से जाना जाता है। वो आता है ना, राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। ग्रहण करो यानी क्या, जानो। हाँ, और छोड़ो यानी क्या, एक को ग्रहण करो कहा, एक को छोड़ो कहा, तो उसको जानना छोड़ो ना। पहले जानना छोड़ दो। यहाँ तो राग को छोड़ने की बात कर रहा है। पहले पहले अपने में है नहीं ऐसा समझकर आत्मा का लक्ष्य करना है, तब तो उसमें राग दिखाई नहीं, तो हम कहेंगे राग को छोड़ा और आत्मा को पकड़ा। नहीं तो लेफ्ट हैंड से छोड़ना और राइट हैंड से ग्रहण करना, ऐसा कुछ है नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य एवं मूर्त गुणों, ये मूर्त का ऊपर का रफार जरा दिख नहीं रहा। गुण ये अनेक वचन है ना, इसलिए मूर्ता है। इसे इंद्रिय ग्राह्य यानी इंद्रियों से जाना जाते हैं, ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक, पुद्गल द्रव्यात्मक यानी पुद्गल द्रव्य मय, पुद्गल द्रव्य रूप, उस रूप अनेक विद्या नहीं, विधा विद्या नहीं चाहिए, विधा चाहिए, विधा यानी प्रकार, विधा विसर्ग देना यहाँ पर। समझ में आया, ब्रैकेट में विद्या लिखा है ना, वो बाहर जो मैं लिखो उसको काट कर विधा लिखना।
की जगह
संस्कृत श्लोक में जैसा है ना वैसे, अनेक विध चे, विध ने प्रकार, अनेक प्रकार के,
वहाँ अनेक विध एक शब्द है, यहाँ अलग अलग लिखा
है। अनेक विध एक शब्द होना चाहिए। अमूर्तानाम द्रव्यानाम, अमूर्त द्रव्यो ना, दक्षाबेन अमूर्त द्रव्यों के नाम बताएंगे। बहुत अच्छा। एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, मूर्त है, बाकी पांच अमूर्त है। तो अमूर्त द्रव्यों के गुण कैसे है, अमूर्त, अमूर्त द्रव्यो ना गुणा है ने गुणों, अमूर्ता ज्ञातव्या, अमूर्त जानवा। ठीक है, मूर्त गुणों नु लक्षण इंद्रिय ग्राह्यपणु छे, ये हमेशा सिखाते हैं सिद्धांत प्रकार। जो जो इंद्रिय दिखता है वो सारा पुद्गल है। फिर क्या कहते हैं, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वो सब पुद्गल है। पर पुद्गल की परिभाषा क्या है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि सभी पुद्गल इंद्रिय ग्राह्य हो गए ही ऐसा नहीं है। कर्म कहाँ इंद्रियों से जाना जाता है, बाकी अनेक जो सूक्ष्म स्कंद जो है, परमाणु है, वो कहाँ इंद्रियों के द्वारा दिखते हैं, है ना। परंतु ये तो स्थूल परिभाषा है ना यहाँ पर। तो मूर्त गुणों लक्षण इंद्रिय ग्राह्यपणु छे, अमूर्त गुणों लक्षण तेनाथी विपरीत छे, अर्थात अमूर्त गुणों इंद्रियोथी जनाता नथी, ग्राह्य नहीं है ने उसके जाने नहीं जाते। वड़ी मूर्त गुणों पुद्गल द्रव्य नाचे, यानी मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के होते हैं, कारण के तेज यानी पुद्गलज एक मूर्त छे, यानी छह द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्त है। अमूर्त गुणों बाकी ना द्रव्यों ना छे, यानी बाकी जो शेष द्रव्य है, बाकी पांच द्रव्य, उनके अमूर्त गुण है, कारण के पुद्गल सिवाय, कारण का न बराबर नहीं है, पुद्गल सिवाय यानी पुद्गल को छोड़कर, पुद्गल सिवाय कहाँ गए आगे, ना 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 ये तो 132 का है। कहाँ पर, 74 पर, अच्छा अच्छा एक लाइन वहां चलिए, कारण के पुद्गल सिवाय बाकी ना बधाए द्रव्यो अमूर्त छे, 74 पेज पर एक लाइन है।
कहाँ पर नहीं मिला मुझे,
74 पेज पर नीचे बोल्ड लाइन के नीचे, यही लिखना अच्छा है, बाकी ना बधाई द्रव्य और मूर्त छे। हाँ हाँ यही पर लिखना, और वो रेफरेंस के लिए पेज 74 लिखो तो चले, बाकी ना बधाई द्रव्यो अमूर्त छे। और वहां जाके उन्होंने 131 लिखा है। हाँ अभी हमको पढ़ना है जयसेनाचार्य की टीका 70 पेज पर। अथ निकालना क्या? मूर्त अमूर्त गुणानाम लक्षणम संबंधम च निरूपयति। मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण और उनका संबंध बताते हैं। मूर्ता इंद्रिय गेज्जा, मूर्ता हा गुणा हा इंद्रिय ग्राह्या भवंती। यानी मूर्त गुण इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, इंद्रियों से जाने जाते हैं। अमूर्ता हा पुनः इंद्रिय विषया न भवंती, यानी अमूर्त जो है वो इंद्रिय के विषय नहीं होते, यानी इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाते। इति मूर्त अमूर्त गुणानाम इंद्रिय अनिंद्रिय विषयत्वम लक्षणम उक्तम। लक्षण क्या बताया? कि इंद्रिय के विषय है क्या नहीं है, यह उनका लक्षण है। तो मूर्त अमूर्त गुणानाम यानी मूर्त और अमूर्त गुणों के इंद्रिय अनिंद्रिय विषयत्वम, इंद्रिय के विषय कौन से? मूर्त है वो इंद्रिय का विषय है और अमूर्त है वो अनिंद्रिय का विषय है। ये उनका लक्षण है ऐसा बताया। इदानीम यानी अब मूर्त गुणाः कस्य संबंधिनो भवन्ति।
इदानीम चाहिए ना?
इदानीम हो, इदानीम शब्द है, इदार नहीं हुआ है, इदानीम है यानी अब। हम कहते हैं हवे यानी अब। मूर्त गुण किसके संबंधी होते हैं उसका संबंध बताते हैं। पोगल दौवपगा अनेक विधा, मूर्त गुणा पुद्गल द्रव्यात्मका अनेक विधा भवंती। यानी जो मूर्त गुण है वो पुद्गल द्रव्यात्मक है और वो अनेक प्रकार के है। पुद्गल द्रव्य संबंधी नो भवंती इति अर्थ, उसका अर्थ क्या है? पुद्गल द्रव्यात्मक है उसका अर्थ क्या है? वो पुद्गल द्रव्य के संबंधी है, उसके साथ उसका संबंध है, ये उसका अर्थ है। अमूर्त गुणानाम संबंधम प्रतिपादयति। अब अमूर्त गुणों का संबंध बताते हैं। दव्वाणाम अमुत्तानम, दव्वाणम अमुत्तानम, दव्वाणम अमुत्तानम। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावम यत परमात्म द्रव्यम तत्प्रभूति, तत्प्रभूति नाम अमूर्त द्रव्यानाम संबंधिनो भवन्ति। क्या कहते हैं? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो परमात्म द्रव्य कहाँ? आप कौन सी लाइन पर रहे? मैं सेकंड लाइन पर रहे, दव्वाणम अमुत्तानम, वो मैं संधि छोड़कर पढ़ रही हूँ। मैंने अमूर्तिक द्रव्यों के अभी उसके लिए पहले में पहले किसको याद किया कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी जो परमात्मा द्रव्य है तत् प्रभृति का अर्थ क्या है? उसको आदि लेकर, प्रभृति का अर्थ होता है आदि, आदि समझे ना? वृषभ प्रभृति कहेंगे तो यानी वृषभादि। तत्प्रभृति नाम अमूर्त द्रव्यानाम यानी उसको आदि लेकर, यानी आदि में हमने देखे धर्म अधर्म आकाश काल सब, वो सब जीवादि सब अमूर्त द्रव्यों के संबंधी होते हैं। ते के कौन उनके संबंधी होते हैं? गुणा अमूर्ता, अमूर्ता गुणा है यानी अमूर्त गुण ये जीवादि द्रव्यों के संबंधी है। केवल ज्ञानादया इति अर्थ, उसका अर्थ होता है केवल ज्ञान आदि, उसका अर्थ होता है ये अमूर्त गुण कौन से है? केवल ज्ञान आदि उसके अमूर्त गुण है। इति देखो मूर्त द्रव्य के सभी गुण मूर्तिक और अमूर्त द्रव्य के सभी गुण अमूर्तिक, ये उसका अर्थ होता है। इति मूर्त अमूर्त गुणानाम लक्षण संबंधौ ज्ञातव्यौ। इस तरह से मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण और संबंध ये जानने चाहिए। अब यहाँ तक दोनों ही आचार्यों की टीकाएं हो गई। अब यहाँ इसी पेज पर वो गुजराती है ना गाथा, उसके नीचे मिला क्या? हाँ, 71 पृष्ठ पर नीचे प्रवचन है, देखो टीका नहीं, वो गुजराती जो हरिगीत है उसके नीचे, हाँ वहां से ये गुरुदेव का प्रवचन है। ऊपर टीका थी ते अमृतचंद्राचार्य की थी। हाँ, आचार्य हमको वहा तीन कषाय के अभाव की वीतराग दशा में रमणता करते हुए, ये सुमेर चंद जी तीन कषाय के अभाव, कौन से तीन कषाय का अभाव हो गया उनको? हाँ बरोबर, ये तीन कषाय कहने से तीन कषाय चौकड़ी ये जाती है ना उनकी अलग अलग, अलंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। उनके अभाव की वीतराग दशा में, ये तो राग के अभाव रूप यहाँ हम दशा को समझाना है, एक संज्वलन है, बाकी तो कोई राग उनके उत्पन्न ही नहीं होते हैं, और वे इनके कर्मों का भी उदय नहीं है यहाँ पर। तो इसी वीतराग दशा में रमणता करते हुए विकल्प आया और यह टीका हो गई। ये तो वीतराग दशा तो कायम है, छठे सातवें दोनों में वीतराग दशा है, सातवां तो शुद्धोपयोग का है और छठा शुभोपयोग, पर वीतरागता तो वहां भी बनी है। तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग की दशा छठे से ही चालू है, छठे में भी है, सातवें में भी है। तो वीतराग दशा में रमणता करते हुए विकल्प आया, विकल्प आया कौन सी भूमिका? ये छठे गुणस्थान की भूमिका है, शुभ शुभ विकल्प आया और यह टीका हो गई है। मैं करूं मैं समझाऊं तो आगे चलकर लोग समझे, ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे कोई मान्यता भी नहीं है, ये सहज रूप से विकल्प आता है और ये रचना हो जाती है। वे टीका के भी कर्ता नहीं है और विकल्प के भी कर्ता नहीं है।
क्या बात,
विकल्प तो सहज आता है और टीका भी वो तो सहज हो जाती है। वो तो कहते हैं कि ये तो परमाणु की रचना है, शब्दों की रचना है, वो अपने से हो गई है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, हमने टीका नहीं की है, ऐसा जो कहा वह निर्माणता से कहा ऐसा नहीं। उस समझ में थे, कोई कहते अरे हमने कुछ नहीं किया ये ऐसा हो गया, कोई कहते ना बहुत बड़ा हमारी झोपड़ी तो देखो, हाँ वो क्या दिखाना चाहता है, अरे कोई मान नहीं ऐसा, वो ऐसी बात नहीं है, लोगों को ऐसा ही लगता है, हाँ ये तो सोच ने कह दी ना, और फिर वो बताने के लिए कहते नहीं हमने नहीं किए, ऐसा नहीं है। वो सचमुच ऐसे उनके जो उस टीका की पर्याय आत्मा से हुई ही नहीं है, परमाणु की पर्याय से हुई है। हाँ, टीका 72 पेज पर उसका प्रवचन टीका का। मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है। लो मूर्त गुण का लक्षण, मूर्त गुण है वे मूर्त द्रव्य के है, परंतु उसे पकड़ने का लक्षण इंद्रिय ग्राह्य है, अर्थात इंद्रिय से पकड़ में आए कि यह जड़ है। क्योंकि ये हम आपको समझा रहे हैं ना, पहले वो तो इंद्रिय ग्राह्य पर इतना ही कहेंगे मूर्त का लक्षण। और अमूर्त गुणों का उससे विपरीत है, अर्थात अमूर्त गुण इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते, अमूर्तपना इंद्रिय से जानने में नहीं आता, वह मन द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आता है। समझ में आया, उसको अनिंद्रिय भी कहा था या अतीन्द्रिय भी कहें। अमूर्त गुण इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते और मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के है, क्योंकि वही पुद्गल ही एक मूर्त है, और अमूर्त गुण शेष द्रव्यों के है यानी पांचों द्रव्यों के है, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त है, यानी पुद्गल को छोड़कर शेष पांच द्रव्य है वो अमूर्त है। पांचों द्रव्य यानी कौन से? आत्मा, धर्मास्य, अधर्मास्य, आकाश और काल, ये अमूर्त है, पुद्गल एक मूर्त है। मूर्त गुण से मूर्त द्रव्य ख्याल में आता है और अमूर्त गुण इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते, मूर्त गुण इंद्रिय ग्राह्य होने से इंद्रिय से ख्याल में आते हैं, और अमूर्त गुण इंद्रिय बिना अतीन्द्रिय ज्ञान से ख्याल में आता है। अब और उसके विशेषताएं बताएंगे। 73 पृष्ठ पर नई गाथा भी 132 नंबर की आने वाली है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, पहले हेडिंग पढ़ते हैं। अथ मूर्तस्य पुद्गल द्रव्यस्य गुणान गुणाति। यहाँ क्या कहते हैं, अबे मूर्त पुद्गल द्रव्य ना गुणों कहते हैं।
गुणाति का अर्थ कहते हैं,
कहते हैं। 74 क्या कहा? हाँ वो बताया ना मैंने, अभी मृत पुद्गल द्रव्यना गुणों कहते हैं, कहे छे। हाँ अभी पहले गाथा पढ़ लेते हैं। वर्ण रस गंध पासा विचंते पोगलस्य सुमादो पुरवा पर्यंतस्य सद्दोसो पोगलो चित्तो। वर्ण रस गंध स्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य सूक्ष्मात् पृथ्वी पर्यन्तस्य च शब्दस्य पुद्गलश्चित्र छेवर्णते मजगन्धवणिरसस्पर्शपुद्गलद्रव्यनि अतिसूक्ष्मति पृथ्वी सुदीवै पुद्गल विविदजे।
इसी के नीचे अन्वयार्थ लिखा है उसी पृष्ठ पर। टीका भी बड़ी है, फिर पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या कहते हैं, अन्वयार्थ पहले पढ़ लेते हैं। वर्ण गंध रस गंध स्पर्शाहा। वर्ण रस गंध ने स्पर्श ए गुणों सूक्ष्मात यानी सूक्ष्म थी मांडी ने पृथ्वी पर्यंतस्य च पृथ्वी पर्यंतना पुद्गलस्य सर्व पुद्गल ने विद्यते ने होई छे। चित्र शब्द हा चित्र ने अनेक प्रकार के, उसको चित्र कहते हैं। चित्र शब्द विविध प्रकार नो शब्द सह ते पुद्गल पुद्गल अर्थात पौद्गलिक पर्याय छे यानी वो कोई गुण नहीं है, वो द्रव्यों की मिली जुली अनेक परमाणु की जैसे भाषा वर्गना से शब्द तैयार होते ये, इसलिए उसको अलग बताया।
दूसरी लाइन में लिखा है सूक्ष्मती मांडी ने, तो मांडी ने का अर्थ क्या?
सूक्ष्म से लेकर मांडी ने हिंदी में क्या कहेंगे, सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी तक पृथ्वी पर्यंत ने पृथ्वी तक। अब ये तो अन्वयार्थ हुआ, इसी को टीका में समझाएंगे।
देखो हाँ। कई लोग ऐसा उनका कहना है
गुजराती
के कुछ जो गुजराती शब्द है वो हाँ। ख्याल में नहीं आते। आज ही आपको बताया किसी ने
हाँ।
तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो उनको सुनने में भी मजा आएगा।
ठीक है। तो वर्ण रस गंध ने स्पर्श ये गुण सूक्ष्म थी लेकर सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी तक यानी सूक्ष्म स्कंद कहो या उससे लेकर बड़े बड़े स्कंदों तक। और शब्द को अलग लिया, वो भी इंद्रिय ग्राह्य है ना, परंतु वो कोई गुण की पर्याय नहीं है, ये तो द्रव्य पर्याय है। शब्द जो है अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय। हाँ यहाँ लिखा पौद्गलिक पर्याय है। वर्ण रस गंध स्पर्श क्या बताए, गुण है और वो सभी पुद्गलों में पाए जाते हैं। और जो विविध प्रकार के शब्द है वो क्या है, पौद्गलिक पर्याय है जिसको हम द्रव्य पर्याय कहेंगे। टीका। स्पर्श रस गंध ने वर्ण, देखो यहाँ बताते समय वर्ण रस गंध स्पर्श कहा और अभी हमें याद क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ नहीं परंतु कर्णानियोग में यही है वर्ण रस गंध स्पर्श। लक्ष्मी याद है ऐसा क्यों? हमने जो जो कर्म के नाम पढ़े ना, नाम कर्म के, उसमें वर्ण रस गंध स्पर्श ऐसा ही आता है। उसका कोई प्रयोजन याद है आपको? प्रदेश बंध जो होता है, यानी परमाणु की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं समझे? जैसे नाम कर्म में इतने परमाणु आगे मान लेते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक कर्म में कैसा होता है? नहीं तो वो तो मूल प्रकृति में जाएगा, पहले वेदनी में जाता है, पहले तो एक भाग अलग निकाला, फिर रिमेनिंग के 8 समान भाग की अगर आयु बनती हो तो वो तो सर में एक एक इक्वल दे दिया। अब जो एक बाजू रखा था उसका फिर एक बड़ा बहु भाग निकाला और वो वेदनीय को दिया, एक भाग बचा, फिर उसमें से बहु भाग ज्ञानावरण दर्शनावरण को दे देंगे और अंतराय को, फिर जो बचा एक भाग उसमें वो मोहनी को दे देंगे, फिर एक बचा नाम और गोत्र को इक्वल डिवाइड करके दे, और बिल्कुल छोटा बचा वो आयु को देंगे। यानी परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। अब जो नाम कर्म में जितना आया उसके खाते में, हाँ तो फिर नाम कर्म में कैसा हो जाता है? नहीं नहीं, पहले हमने गति ना देखो, हमने नाम कर्म कैसे याद किए थे, पहले गति, फिर जाति, फिर शरीर, फिर इस तरह से संस्थान, फिर अंगोपांग, इसी ऑर्डर से हम याद करते हैं, परंतु उसका डिस्ट्रीब्यूशन उल्टे क्रम से होता है। पहला भूभाग निर्माण को जाएगा, लास्ट में निर्माण है ना, तो इसलिए करना नहीं हो कि जो कुछ हम याद करते हैं उसके विशिष्ट कारण होता है, जैसे ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो कौन से कर्म में किस पद्धति से, किसी को शुरू से अंत तक उल्टे क्रम से जाएंगे, किसी में उल्टे क्रम से जाएंगे, हाँ नाम कर्म की उल्टे क्रम से आए, हाँ तो उसमें भी ऐसा वर्ण रस गंध स्पर्श, यानी पहला बहुभाग स्पर्श को जाएगा, फिर वर्ण को, हाँ फिर गंध को, फिर रस को, फिर वर्ण को, इस तरह से।
और जो छोटे से छोटा एक भाग रहता है,
हाँ
वो भी अनंत अनंत
है, बिल्कुल अनंतों का ही होता है, हमारे सब अनंतों में होते डीलिंग, हाँ हाँ बोलो। देखो अकेले नाम कर्म की बात है, अकेले वर्ण रस गंध की नहीं है, नाम कर्म ही जो प्रदेशों का डिस्ट्रीब्यूशन, जब कर्म का बंध होता है तो नाम कर्म के खाते में मान लेते ना, ये 7वां या 8वां भाग आया, अभी उसमें हीना दिखता हमने बता दिया, अब जो भाग आया तो नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां बनती है, तो हमको तो ये भी मालूम चाहिए, देवगति बनता है तो कितनी बनती है, तीरंज गति तो कितनी बनती है, तो हम इस तरह से कोई जो पर्टिकुलर बंध का स्थान है, तो नाम कर्म के जो हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि उसके पहले गति नाम कर्म, फिर जाति नाम कर्म, फिर शरीर नाम कर्म, उसके नाम अब उस क्रम से याद करेंगे, तो उनमें उल्टे क्रम से वो बहुभाग एक भाग दिया जाता है। मान लेते ना अभी देवगति का 28 का बंध है, तो 28 प्रकृतियों में लास्ट वाली निर्माण है, तो पहले एक भाग निकालेंगे, 28 समभाग करेंगे, एक्चुअली 28 नहीं होंगे क्योंकि सबको शरीरों को मिलकर एक होता है, तो औदारिक उनके वैकृत तेजस कारमन के मिलकर एक भाग बताएंगे, यानी उसके 26 इक्वल भाग करेंगे, फिर उल्टे क्रम से निर्माण को एक भाग का बहु भाग निर्माण को देंगे, फिर जो बचा है वो तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते, लास्ट में जाएंगे गति का नंबर आएगा, तो गति में मिनिमम परमाणु होंगे, तो उसमें हम वर्ण गंध रस स्पर्श ऐसा याद करते हैं, तो उल्टे क्रम से ने पहला बहुभाग स्पर्श को जाएगा, फिर इस तरह से उल्टे 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 आएंगे। अब यहाँ टीका पढ़ेंगे,
आपका कहना ये समझने के लिए करना नियोग का अभ्यास चाहिए
यदि आप चाहो तो जबरदस्ती कौन करेगा किसके, स्पर्श रस गंध ने वर्ण इंद्रिय ग्राह्य छे, यानी इंद्रियों के द्वारा वो जाने जाते हैं, कारण के ते वो इंद्रियों ना विषय छे, विषय समझते हैं ना, इंद्रिय ज्ञान जिसको है, वो ज्ञान जिसको जानता है वो ज्ञान का विषय कहने में आता है, इंद्रिय के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वो उस ज्ञान के विषय कहेंगे, इंद्रिय के विषय कहेंगे। तो स्पर्श कौन से इंद्रिय का विषय है बोलो, इतना आसान है ना, तो ये स्पर्श जो है वो क्या है, पुद्गल का गुण है, और उसको जानने वाली स्पर्शन इंद्रिय है, इंद्रियों को स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं कहना, वो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, वो इंद्रियों के नाम, और उनके विषय क्या है, पुद्गल के ये गुण कहो या उनके पर्याय कहो।
यहाँ तो हमने स्पर्श रस गंध वर्ण इतना ही देखा है,
हाँ।
तो मेरा ये प्रश्न है कि शब्द जो है वो कौन से इंद्रिय से ग्राह्य होगा?
शब्द छोड़ा जाता नहीं कुछ
यानी ये नक्की होता है कि पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनको ही कर्णेंद्रिय होगा या श्रोत्रेंद्रिय, जो भी आप कहो।
वचन तो द्विंद्रिय से है सबको, देखो स्पर्श रस गंध ने वर्ण इंद्रिय ग्राह्य छे, कारण के तेओ ने स्पर्श रस गंध वर्ण इंद्रियोना विषयो छे, जब ये भाषा समझनी चाहिए, विषय ने वो तो गेय पदार्थ है ना, उसके इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाले पदार्थ को विषय कहेंगे। तेओ इंद्रिय ग्राह्य पनानी व्यक्ति अने शक्ति ने वशे, क्या कहा, इंद्रिय ग्राह्य पना है उसमें, इंद्रियों के जाने जावे ऐसी शक्ति है, उसकी व्यक्ति अने शक्ति ने वशे, इंद्रियों बड़े भले ग्रहाता हो के न ग्रहाता हो तो पन, क्या कहा कि इंद्रिय के द्वारा ग्राह्यपन की शक्ति है परंतु व्यक्त रूप हो हुए ही ऐसा नहीं है, तो कहते व्यक्ति अने शक्ति ने वशे ने उसके कारण इंद्रियों बड़े करते थे, इंद्रियों के द्वारा भले ग्रहाता हो के न ग्रहाता हो, यानी इंद्रियों के द्वारा बने जाने जाते हो या नहीं भी जाने जाते, तो पन ते वो एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु थी मांडी ने, क्या कहते हैं, एक द्रव्यात्मक ने परमाणु क्या है, एक द्रव्य है, सिंगल परमाणु है ना, उसको एक द्रव्यात्मक कहा, तो एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु थी मांडी ने, यानी परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद सुधीना, ये पृथ्वी का जो स्कंद है वो बहुत बड़ा है ना, हाँ महास्कंद देखो तो पूरा पृथ्वी का, ये सूक्ष्म और बादर पृथ्वियों का मिलकर एक महास्कंद, पूरे लोकाकाश प्रमाण है, एक परमाणु से लेकर पूरा महास्कंद पर्यंत ले लो, महास्कंद में दो पृथ्वियों के बीच तो कुछ दिख नहीं रहा, हमको नहीं दिख रहा है वहां पर ये बड़े बड़े पत्थर और ये तो हमको दिखते ना, पृथ्वियां जो है वो तो दिखती है ना, हाँ। तो कहते के स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद सुधीना सर्व पुद्गल ने, यानी अभी कोई पुद्गल छोड़ा नहीं, सभी पुद्गलों को अविशेषपणे ने सामान्य तरीके से विशेष गुणों तरीके होय छे। फिर से क्या कहना चाहते हैं, ये किसकी बात चल रही है, स्पर्श रस गंध है वर्ण है, वो क्या है, इंद्रियों के विषय है, और वो भले ही इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हो या नहीं भी जाने जाते हैं, फिर भी वो एक परमाणु से लेकर स्थूल पृथ्वी स्कंद तक सभी पुद्गलों को विशेष गुणों तरीके होय छे। तेओ एने कौन गुणों, ये जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये क्या है, अविशेषपने विशेष गुणों तरीके होय छे, इसका अर्थ समझना जरा,
सामान्य
यानी सभी पुद्गलों में वो सामान्य से सभी के वो विशेष गुण है, भले वो परमाणु हो या बहुत बड़ा स्कंद हो,
यानी हम समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं, अग्नि है वो दिखता है ना, तो दिखता है तो उसको वर्ण गुण है, हाथ लगाए तो गर्म लगता है तो स्पर्श गुण है, उसकी विशिष्ट गंध आती है, तो उसमें रस गुण होगा कि नहीं होगा, तो क्यों अविशेषपने विशेष गुणों तरीके हो, यानी एक गुण होता है तो अन्य गुण होंगे ही होंगे, जिसको हमने देखा था,
आपको अविना भाव समझ,
एक गुण हो तो अन्य गुण
अविना भाव,
अविना भाव संबंध होता है, यही बात यहाँ पर बता रहे,
और ऐसा भी है ना, अभी इसमें तो एक तो गुण दिखाई देता है यानी पर्याय, परंतु कर्म की तो कुछ भी नहीं दिखाई देते, तो यहाँ लिखा है ना कि इंद्रियों वड़े भले ग्रहता हो के न ग्रहता हो, एक सिंगल परमाणु इंद्रियों के द्वारा किसी को भी नहीं समझ में आएगा, ना सर्वावधि वाले को भी, वो अवधि ज्ञान से जानते हैं परंतु इंद्रियों से तो नहीं जानते। केवल ज्ञानी तो सवाल ही नहीं, वो इंद्रियों से कुछ भी नहीं जानते, वो तो केवल ज्ञान से ही जानते हैं। परंतु यहाँ कहते कि वो इंद्रियों के द्वारा जाने जाए या नहीं जाने जाए, परंतु ये तो गुण तो सभी पुद्गलों में पाए जाते हैं।
अविशेषपने यानी
सामान्यपने सभी
ये
सभी पुद्गलों का वो विशेष गुण है।
विशेष यानी स्पर्श रस गंध वर्ण ये सिर्फ पुद्गल में ही होंगे, अन्यत्र नहीं होंगे,
अन्य द्रव्यों के नहीं। लेकिन लिए ना, अने तेवो मूर्त होवाने लीधे पुद्गल सिवायना बाकीना द्रव्यों ने नहीं वर्तता हुआती, अने अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, पुद्गल ने जनावे छे, वो केवल पुद्गल को ही बताते हैं। अब यही रुकेंगे हम। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो। वीरेश भाई।